अरुणिमा की आंखें फोन की घंटी से खुली। उसने देखा कि लिविंग रूम में रखा फोन बज रहा था। उसे याद आया कि वो सोफे पर ही सो गई थी कल रात आस्तिक के इंतजार में। अब सामने रखे टेलीफोन की घंटी लगातार बज रही थी। उसने जल्दी से फोन उठाया और कान पर लगाते हुए कहा, हेलो रायचंद मेंशन। सामने से नीरज की आवाज आई, हेलो मैम, मैं बोल रहा हूँ नीरज। नीरज की आवाज सुनकर अरुणिमा चौंक गई। उसने इस नंबर पर क्यों कॉल किया? उसके पास तो अरुणिमा का नंबर है। वो एकदम से पूछ बैठी, नीरज तुमने इस नंबर पर क्यों फोन किया है और क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरुणिमा के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए नीरज बोला, मैम क्या आपको पता है कि सर कहाँ हैं? नीरज की बात सुनकर अरुणिमा हैरान रह गई। कल एयरपोर्ट से निकलने के बाद आस्तिक ने उसे घर भेज दिया था और खुद कहीं चला गया था। पहले तो अरुणिमा को लगा कि वो उस लड़की के पास गया है जिसके साथ वो रहता है। कुछ सोचने के बाद उसे उसका नाम याद आया, अमायरा। वो शायद अमायरा के घर गया होगा, उसने मन ही मन सोचा। वो नीरज से ये बात कहने में झिझक रही थी, लेकिन जिस तरीके से नीरज बोल रहा था उस हिसाब से अरुणिमा ने कुछ हिचकते हुए कहा, नहीं नीरज, वो मेरे साथ नहीं है, तुम दूसरी जगह क्यों नहीं बता करते? नीरज अरुणिमा के कहने का मतलब समझ गया था, दूसरी जगह यानी कि आस्तिक का दूसरा अपार्टमेंट जहां वो अमायरा के साथ रहता है। अरुणिमा ये कहते वक्त कितना संकोच कर रही थी और उसके दिल पर क्या बीत रही थी ये तो बस वही जानती थी। अपने पति का पता वो इस तरीके से दे रही थी और खुद ही कह रही थी कि वो किसी और औरत के साथ है। तुम वहां पता करो, वहां वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अरुणिमा का दिल दर्द से भर गया था। आस्तिक एयरपोर्ट से निकलते ही कहीं चला गया था। वो मुंबई आते ही अमायरा से मिलना चाहता था और इसी वजह से उसने अरुणिमा को एयरपोर्ट पर अकेला छोड़ दिया था। यही ख्याल उसके जहन में चल रहा था। लेकिन नीरज ने आगे कहा, नहीं मैम, दरअसल सर शाम को कहीं बाहर गए थे, मैंने उन्हें देर रात कॉल किया था। उन्होंने मेरा फ़ोन तो रिसीव किया लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, मुझे बस कुछ टूटने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन सर ने मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे उनसे कहना था कि हमारे फॉरेन क्लाइंट्स आज ही उनसे मीटिंग करना चाहते हैं और ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ना तो सर अब मेरा फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही उनका कुछ पता चल रहा है। अरुणिमा ये सुनकर और भी घबरा गई। उसने जल्दी से पूछा, क्या आस्तिक फ़ोन नहीं उठा रहा है और उसका कुछ पता भी नहीं है? तुमने पता करवाया, वो कहाँ जा सकता है? नीरज ने जवाब दिया, जी मैम, मैंने हर जगह पता करवाया लेकिन सर कहीं नहीं है। अब अरुणिमा को सच में टेंशन होने लगी थी। आस्तिक रात में घर नहीं आया था, एयरपोर्ट से निकलते ही वो कहीं चला गया था और नीरज के मुताबिक वो अमायरा के साथ अपने अपार्टमेंट में भी नहीं है, तो फिर वो गया कहाँ? अरुणिमा ने जल्दी से कहा, रायचंद मेंशन, आस्तिक के पेरेंट्स का घर, एक बार वहाँ पता करो, शायद वो अपने पेरेंट्स से मिलने गया हो। नीरज ने तुरंत जवाब दिया, मैम मैंने सबसे पहले वही फ़ोन किया था, सर वहाँ नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुझसे कहा था कि सर आपके पास होंगे, इसके बारे में आपसे पूछें, उन्हें खुद नहीं पता कि आस्तिक सर कहाँ है। अब तो मुझे सच में टेंशन हो रही है, मीटिंग तो फिर भी मैं और आभा मैम संभाल लेंगे लेकिन सर का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। अरुणिमा का दिल घबराने लगा था, उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने नीरज से कहा, जब तुम्हारी कल रात आस्तिक से बात हुई थी तो तुम्हें कुछ याद है, उसने कुछ कहा हो या फिर कोई हिंट मिला हो जिससे हम उसे ढूंढ सकें? नीरज याद करते हुए बोला, नहीं मैम, कल जब मैंने सर को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन ज़रूर रिसीव किया था लेकिन सामने से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे तो बस चीज़ों के टूटने की आवाज़ आ रही थी और उसके बाद करीब दो मिनट तक एकदम साइलेंस था। फिर नीरज बोला, और हाँ, इन टूटने की आवाज़ों के बीच मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी थी, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट होती है वैसी कोई आवाज़, लेकिन ये बहुत हल्की थी, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की आवाज़ थी या किसी और चीज़ की। अरुणिमा नीरज की बात ध्यान से सुनती है, अब वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं भी पता करने की कोशिश करती हूँ और तुम भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, जैसे ही कोई खबर मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। नीरज ओके कहकर फ़ोन काट देता है और अरुणिमा भी फ़ोन रख देती है, लेकिन अब उसे बेचैनी हो रही थी। कुछ सोचते हुए अरुणिमा ने आस्तिक के दोस्त विक्रम खंडेलवाल को फ़ोन किया, लेकिन अरुणिमा के पास विक्रम का नंबर नहीं था। उसने विक्रम के ऑफिस में फ़ोन किया तो वहाँ से उसे पता चला कि विक्रम किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए पुणे गया हुआ है। वो पिछले हफ्ते ही पुणे चला गया था, मतलब विक्रम इस समय शहर में नहीं है, तो उसे कैसे पता होगा कि आस्तिक कहाँ है? लेकिन अरुणिमा को आस्तिक को ढूंढना ही था। तभी उसे नीरज की बात याद आती है कि जब उसने आस्तिक को फ़ोन किया था तो उसे आवाज़ों के बीच में रेलवे प्लेटफॉर्म की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी थी। अरुणिमा को अचानक याद आता है कि आस्तिक का एक फार्म हाउस मुंबई के बाहर हिल स्टेशन के पास है, जहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा रेलवे प्लेटफॉर्म है। वहाँ मुश्किल से पूरे दिन में एक दो ट्रेनें ही गुजरती हैं। अरुणिमा को ये बात इसीलिए याद है क्योंकि आभा ने उसे बताया था। जब आस्तिक ने यह फार्म हाउस खरीदा था तो आभा को इस बारे में पता था और उसी ने अरुणिमा को बताया था कि आस्तिक एक नया फार्म हाउस ले रहा है जो हिल स्टेशन पर है और उसके पास ही एक रेलवे स्टेशन है।
अरुणिमा को सिर्फ एक अंदाजा सा हुआ। वो पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि आस्तिक वहीं होगा, लेकिन वो ऐसे भी तो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने जल्दी से अपना पर्स लिया, उसमें फोन और कुछ जरूरी पैसे रखे और घर से निकल गई। वो अपनी गाड़ी लेकर नहीं गई क्योंकि हिल स्टेशन पर बाहरी गाड़ियां अलाउड नहीं होती। वहां सिर्फ उन्हीं लोगों की गाड़ियों को एंट्री मिलती है जिनका वहां फार्म हाउस या बंगला हो। बाकी ट्रांसपोर्ट के लिए लोकल गाड़ियों का ही इस्तेमाल होता है। अरुणिमा एक टैक्सी पकड़कर मुंबई के बाहरी इलाके में पहुंची और वहां से एक लोकल गाड़ी बुक कर हिल स्टेशन की तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे मार्केट पीछे छूट रहा था और रिच एरिया आ रहा था, अरुणिमा देख रही थी कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। पहाड़ी इलाकों में बने हुए घर और बड़े बड़े बंगले उस खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। वहां बाहरी लोगों का आना जाना बंद था, जिस वजह से वहां सफाई बनी हुई थी और यह हिल स्टेशन सच में एक पर्यटक स्थल जैसा बन गया था। लेकिन जिस इलाके में आस्तिक का फार्म हाउस था वो एक कंजर्वेटिव रिजर्व एरिया था। वहां बाहरी लोगों का आना सख्ती से मना था। सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते थे जिनका वहां बंगला या फार्म हाउस हो, बाकियों को वहां के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता। पहाड़ के अंतिम रास्ते पर पहुंचते ही ड्राइवर ने अरुणिमा को उतरने के लिए कहा, लेकिन अरुणिमा जहान होकर बोली, मैं यहां से कहां जाऊंगी, मुझे तो नहीं पता कि कहां जाना है। लेकिन ड्राइवर ने यह कहकर उसे उतार दिया कि वो इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि आगे की एंट्री अलाउड नहीं है। अगर अरुणिमा को आगे जाना है तो उसे पैदल ही जाना होगा। अरुणिमा गाड़ी से उतर गई और उसे पैसे दे दिए। उसके बाद वो पैदल ही अंदर की ओर बढ़ने लगी। वहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसे अलग अलग बंगलों के बोर्ड दिख रहे थे, लेकिन वो इनमें पहचान कैसे करती कि आस्तिक का फार्म हाउस कौन सा है।
तभी उसे आभा की याद आती है। आभा को तो पता होगा ना कि आस्तिक का फार्म हाउस कौन सा है। आखिर जब आस्तिक ने ये फार्म हाउस लिया था तब आभा को इसके बारे में पता था। उसने जल्दी से आभा का नंबर डायल किया। आभा इस वक्त ऑफिस में ही थी और नीरज के साथ मीटिंग की तैयारी कर रही थी। अरुणिमा की कॉल आने पर उसने जल्दी से फोन रिसीव करते हुए कहा, हेलो भाभी, कैसी हैं आप और कैसा रहा आपका भाई के साथ बेंगलुरु वाला टाइम? एक हफ्ते का बोलकर आप लोग 15 दिन में लौटे हैं। मैं तो समझी थी आप लोग मिनी हनीमून पर गए हैं। ये बोलकर आभा हंसने लगी। अरुणिमा ने उसकी बात को बचपना समझकर इग्नोर कर दिया और पूछा, क्या तुम जानती हो कि हिल स्टेशन पर जो आस्तिक का फार्म हाउस है उसका नाम क्या है? आभा थोड़ी चौंकी जरूर, लेकिन फिर बोली, जी भाभी, मुझे पता है, फार्म हाउस का नाम है ग्रीन माउंटेन। लेकिन क्या हो गया भाभी, आप अचानक से ये क्यों पूछ रही हैं? पर अरुणिमा ने आभा के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगी। उसे बस ग्रीन माउंटेन फार्म हाउस तक पहुंचना था। बहुत सारे बंगले पीछे छूटते गए और अब तो रास्ता भी खत्म होने को आया था। अरुणिमा थक चुकी थी, उसके पैर जवाब देने लगे थे। पहाड़ की चढ़ाई उसने अपने पैरों से तय की थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी जब उसने पहाड़ के सबसे आखिरी बंगले को देखा। उसकी आंखें चमक उठी। बाहर लगे बोर्ड पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था ग्रीन माउंटेन। और इससे भी ज्यादा खुशी उसे इस बात की हो रही थी कि उसने लोहे के दरवाजे के पीछे आस्तिक की गाड़ी देखी थी। मतलब उसका अंदाजा सही था, आस्तिक अपने फार्म हाउस में ही आया है।